समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओ, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर होगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तो श्रोताओ, परिक्रमा की संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। हस्बे दस्तूर हम आपको देश की परिक्रमा भी कराएंगे, क्योंकि भाई नाम है परिक्रमा हमारे शो का मुकेश, तो परिक्रमा जब तक ना होगी कंट्री की, अनटिल एंड अनलेस वी गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर पोरिंग इन यू नो थ्रू आवर कॉरेस्पॉन्डेंस, तब तक हमारे कह सकते हैं शो के लिए न्याय नहीं होता है। उसके अलावा मुकेश हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन आवर टुडेज शो, बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। Severe cyclonic storm Dana likely to make landfall between Bhitarkanika and Dhamra along Odisha coast later tonight. Various districts of Odisha and West Bengal to witness extremely heavy rainfall under cyclone's impact.
दोनों राज्यों के तटीय भागों में बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जा रहा है। 200 से अधिक रेलगाड़ियां और 40 उड़ानें रद्द।
Government approves two rail projects with an estimated cost of 6,798 crore rupees to provide connectivity, facilitate ease of travel and minimize logistical cost. Also approves setting up of 1,000 crore rupees venture capital fund dedicated to space sector. German Chancellor Olaf Scholz to arrive in India today on a three-day visit to take part in intergovernmental consultations with Prime Minister Narendra Modi.
भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, ITBP लोगों की रक्षा के लिए वीरता और समर्पण का प्रतीक है।
And in wrestling, India's Vishwajit Ramchandra More bags bronze medal at Under-23 World Championship in Albania. And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments that take place at the national or global level. And of course, today is World Polio Day. So, zahir hai, Mukesh, ki hum log ke Dateline India ka bhi topic yahi hai.
Bilkul.
To the day, World Polio Day highlights the global efforts to end polio, a highly contagious viral disease that primarily affects children. The theme for World Polio Day 2024 is a global mission to reach every child. The day is observed to raise awareness of the importance of polio vaccination to protect every child from this devastating disease and to celebrate the many parents, professionals and volunteers whose contributions make polio eradication achievable. World Polio Day is observed on 24th of October, and that's the birthday of Jonas Salk, who was the first to develop a vaccine against polio.
बिल्कुल, पोलियो एक संक्रामक बीमारी है और ये पूरे शरीर को प्रभावित करती है। इस बीमारी का शिकार अधिकांशतः बच्चे होते हैं। पोलियो को पोलियोमायलाइटिस या शिशु अंगघात भी कहा जाता है। ये ऐसी बीमारी है जिससे कई राष्ट्र बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि विश्व के अधिकतर देशों से पोलियो का खात्मा पूरी तरह हो चुका है, लेकिन अब भी विश्व के कई देशों से ये बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो पाई है।
Yes, that's true. In fact, if we talk about our country, Mukesh, I think we have made a lot of progress in the past few decades. क्योंकि पहले पोलियो बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट करता था, but because of the efforts of the government और बहुत ही कह सकते हैं कमर कस के ये जो अभियान चला था, आपको याद होगा, सिर्फ दो बूंद जिसमें दो बूंद पोलियो की, जिसमें अमिताभ बच्चन was the ambassador. And in fact, अमिताभ बच्चन mentioned in one of his shows also that पहले बहुत विनम्र तरीके से वो कहते थे कि आप पहले पास में जाइए, तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं हुआ, बट गांव के लोग जब उन्होंने अमिताभ बच्चन की डांट सुनी, अरे आप गए नहीं अभी तक पोलियो बच्चों को दिला रहे,
वो ज्यादा आ गया है,
देन दे थॉट ओह माय गॉड वी कैन नॉट मेक अमिताभ बच्चन एंग्री, सो ओके लेट्स गेट द चिल्ड्रन देयर पोलियो ड्रॉप्स। सो चाहे जो भी हो जरिया, लेकिन नॉनदलेस आवर कंट्री हैज अचीव्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वैक्सीनेशन इज कि ये ओरल ड्रॉप्स के रूप में भी आती हैं, मोस्टली उसी से ही दी जाती हैं बच्चों को, तो बच्चों के रोने धोने या दर्द का आपको कोई वो नहीं है।
जी बिल्कुल।
And well, on this day, the regional director of WHO for Southeast Asia, Saima Wajid, extended her heartfelt congratulations to all the countries and partners in the WHO Southeast Asia region for achieving and maintaining a decade of polio-free status. The world observes World Polio Day today, which is the birth date of Jonas Salk, who led the first team to develop a vaccine against polio.
और पोलियो जो है इसमें आमतौर पर टांगों में लकवा हो जाता है. पोलियो का वायरस मुंह के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है और आंतों को प्रभावित करता है. वायरस के शरीर में प्रवेश करने के कुछ ही घंटों बाद इससे पक्षाघात हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ये लक्षण 3 से 5 दिन में दिखाई दें. और क्या लक्षण हो सकते हैं वो अपने श्रोताओं को बता दें कि पोलियो की बीमारी में मरीज की स्थिति वायरस की तीव्रता पर निर्भर करती है. अधिकतर स्थितियों में पोलियो के लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, लेकिन इसके कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार होते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, उल्टियां आना, गले में दर्द, सिर में तेज दर्द और तेज बुखार, या खाना निगलने में कठिनाई होना, और जटिल स्थितियों में हृदय की मांसपेशियों में सूजन भी आ जाती है.
That's true, and it's very important, Mukesh, that we remain united in our mission, drawing inspiration from our shared successes and our demonstrated resilience. And as I mentioned earlier, that the theme for World Polio Day 2024 is a global mission to reach every child. This theme emphasizes the ongoing efforts to vaccinate every child against polio, especially in regions where the disease is still endemic. It highlights the importance of reaching underserved and vulnerable populations to achieve a polio-free world.
और श्रोताओं, इस समय अब हम चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानने का कि उनके पास क्या कुछ है खास. तो सबसे पहले चलते हैं
भोपाल.
सबसे पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज 6,798 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत की 2 रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है. इसका उद्देश्य आवागमन की लागत कम करना और लोगों को यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराना है. पहली परियोजना के अंतर्गत नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर की 256 किलोमीटर लंबी 2 रेल लाइन बिछाई जाएंगी. इससे नेपाल, पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सामाजिक आर्थिक विकास भी बढ़ेगा. नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने अमरावती के रास्ते इरुपलम और नामबुरू के बीच एक नई रेलवे लाइन के निर्माण की भी स्वीकृति दे दी है.
आप सब जानते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल सिटी है और ये कैपिटल सिटी बहुत ही एक नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप किया गया है. इसमें कि अर्बन प्लानिंग के सारे पॉइंट्स को इसमें फोकस किया गया है. तो अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर की 2,245 करोड़ रुपीज के इन्वेस्टमेंट से बनेगी. कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा. इट विल बी 3.2 किलोमीटर लेंथ. दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट. दिस विल प्रोवाइड डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी टू हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर एंड वाया नागपुर टू दिल्ली एंड वाया हैदराबाद टू मुंबई. डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू प्रैक्टिकली ऑल द मेट्रोज विल गेट कनेक्टेड टू अमरावती.
सो मुकेश, अब तो लिसनर्स को पता ही चल गया है, क्योंकि आपने जब मंत्रिमंडल की खबर सुनाई उससे पहले हमने क्यू दे दिया था कि ये सिलसिला आज का परिक्रमा का विल स्टार्ट फ्रॉम द सिटी ऑफ भोपाल.
बिल्कुल, तो चलते हैं भोपाल के लिए. मध्य प्रदेश के रीवा में क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन में कल 31,000 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं. इससे राज्य के 28,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. इस दौरान 2,680 करोड़ रुपए की 21 इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया. सरकार ने बड़े उद्योगों के लिए उद्योग पॉलिसी में बदलाव करने की भी कही है. निवेश से ज्यादा इस सम्मेलन में विंध्य क्षेत्र के लजीज व्यंजनों की भी चर्चा हुई और सभी अतिथियों ने इनका जमकर लुत्फ उठाया. और जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता संजीव शर्मा.
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से कल संभागीय मुख्यालय रीवा में पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यानी क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन हुआ. सम्मेलन में शामिल अतिथियों तथा उद्योगपतियों के लिए बघेलखंड के विशेष व्यंजनों से भोजन की थाली सजाई गई. मेहमानों ने भी इन स्वादिष्ट व्यंजनों की जमकर तारीफ की. मेहमानों के लिए बघेलखंड के जाने माने व्यंजन बगचा, रिकमच, बरा मुंगोरा, इदरहर, तस्मई, दालपूरी, गुराम, बाटी भरता, आगाकर, महुआ से बने लाटा, लड्डू, मोहरी जैसे अनेक व्यंजन परोसे गए। सम्मेलन में श्री अन्न से बने व्यंजनों की भी धूम रही। कोदो कुटकी, मक्का, ज्वार तथा बाजरा के बने खान पान का सबने स्वाद लिया। बघेलखंड की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार सम्मेलन में आने वाले अतिथियों का जहां आत्मीय स्वागत किया गया, वहीं उनकी खातिरदारी में भी कोई कोर कसर नहीं रखी गई। इस दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा एमएसएमई और स्टार्टअप में निवेश के अवसरों पर एक महत्वपूर्ण सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में एमएसएमई और स्टार्टअप में निवेश के अवसरों पर डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी, सचिव सह आयुक्त सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम द्वारा प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। इस सत्र में बताया गया कि एमएसएमई अधीनस्थ कंपनियों के रूप में बड़ी कंपनियों को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं, चाहे वो व्यापार, सेवा या विनिर्माण से संबंधित हो। सत्र के दौरान विशेषज्ञों ने औद्योगिक आकांक्षियों को उद्योग खोलने के लिए वित्त प्रबंधन, मानव पूंजी प्रबंधन, कौशल प्रबंधन के साथ साथ उपलब्ध बाजार से लाभ उठाने के सुझाव भी दिए। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
And from Bhopal, we are heading towards Bhubaneswar, Odisha. And we all know that the big story coming in from there, Mukesh, is about Cyclone Dana, which is about to make landfall later tonight. So, sare jitne bhi listeners hum log ke Odisha ke hain, especially we would request them to please stay indoors and be at safer places. If your house is near the coast, then please evacuate to safer regions. And I think our correspondent has more details on this.
Under the impact of a severe cyclone Dana, heavy winds and high tides are seen in the coastal districts of Odisha, specifically in Balasar, Bhadrak, Kendrapada and Pur districts. The IMD said rainfalls and wind speed will increase on and off Odisha coast this evening with high tidal wave up to 2 to 3 meters along the coast. The government is still evacuating with a target of 10 lakh people living in low-lying areas to multi-purpose cyclone centers as of now. The state government has opened cyclone control room in various districts while state ministers are deputed to take stock of the situation. More than 200 trains have been cancelled and flight operation from Bhubaneswar will be suspended from 5 p.m. today to 9 a.m. tomorrow. Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi chaired a high-level meeting to review the preparedness for severe cyclone Dana at Lok Sabha Bhavan in Bhubaneswar. On the other hand, NDRF has deployed 10 teams in various districts of Odisha, while Indian Navy has put 2 ships on standby to aid with relief materials. Cyclone is not new to Odisha. Over the last 22 years, the state has witnessed 10 cyclones. In the worst cyclones in history, 1999 super cyclone that killed nearly 10,000 people and displaced almost a million others. Tapan Maharana for a parikrama from Cuttack.
और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश क्यों चलेंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में वाराणसी में 6 लाइन के रोड और 4 लेन वाले रेल पुल की मंजूरी दी है। इससे न केवल वाराणसी से होकर जाने वाली सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों के लिए समय में बचत होगी, बल्कि इससे अंग्रेजों के जमाने में बना पुल जो मालवी पुल कहलाता है उस पर भी दबाव कम होगा। इसके साथ साथ चंदौली और वाराणसी को जोड़ने की वजह से चंदौली के विकास को भी नया आयाम मिलेगा। ये पुल इंजीनियरिंग का भी एक नया नमूना होगा, क्योंकि इसके जो पिलर हैं वो गंगा नदी में 120 फीट की गहराई तक नीचे जाएंगे। किस तरीके से ये काशी की तस्वीर बदलने में सहायक होगा, इस पर आकाशवाणी समाचार लखनऊ ने बात की उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के मंडल प्रबंधक सचिंद्र मोहन शर्मा से।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिससे न केवल सड़क यातायात बेहतर होगा बल्कि रेलवे को बहुत बड़ा इससे फायदा होगा ट्रेनों के आवागमन में। किस तरीके से ये यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा और रेलवे में किस तरीके से इसका असर होगा, इस पर बात करने के लिए लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक एसएम शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लगभग 2,500 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। किस तरीके से आप देखते हैं कि रेलवे को इसमें क्या फायदा होगा और उसके चलते आम लोगों को किस तरीके से सहूलियत होगी?
अभी जो हमारा मालविया ब्रिज है, ये भी एक रेल कम रोड ब्रिज है, बट करीब 137 साल पुराना है। और जो हमारा ये लाइन है जो नॉर्थ से ईस्ट को ज्वाइन कर रही है गंगा पुल के ऊपर से, इसमें ऑलरेडी 163% लाइन कैपेसिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो गाड़ियां चलाना बहुत मुश्किल रहता है। इसीलिए ये एक सौभाग्य है यूपी का कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नए पुल जो है उसको सैंक्शन किया है। ये कोई 2642 करोड़ का है और ये 150 साल के हिसाब से जितना ट्रैफिक आएगा उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। तो ऊपर में 6 लेन की हाईवे चलेगी और नीचे 4 लाइनें हैं, अभी जो हम देखें जो मालविया पुल है उसमें नीचे दो ही लाइनें चलती हैं, सो इससे अब चार हो जाने पे जो कैपेसिटी है मोर देन डबल हो जाएगी, तो जितनी भी गाड़ियां हम चला रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम चला पाएंगे और ईस्ट और नॉर्थ को हम इस गंगा पुल के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे। जो ब्रिज है वो इतना बड़ा होगा कि इसकी जो फाउंडेशन है करीब 120 फुट रिवर बेड के नीचे जाएगी, जो कि एक करीब 3 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होती है। इसकी लोकेशन वही पुराने ब्रिज के पास ही है, करीब 50 मीटर राइट हैंड साइड पे होगी जहां नमो घाट है वहां पे, और 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होगा और 4 साल से ज्यादा लगेंगे। अब आप फायदे और जानना चाहें तो मैं ये कहूंगा कि इसको 4 साल जो लगेंगे तो करीब 10 लाख मैन डेज की एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करेगा यूपी के लिए, तथा जितना भी हमारी सप्लाई चेन है उसको स्ट्रीमलाइन करेगा और इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो ट्रैफिक आना है मालगाड़ी का या सवारी गाड़ियों का, वो डबल हो सकता है इसके कारण। तो ये इतने फायदे होने वाले हैं।
And now we all know that on Budh Purnima lately, Pali language was given the status of classical language. और ये बहुत अच्छा तोहफा मिला था Prime Minister Narendra Modi की तरफ से, who extended his gratitude and appreciation to the scholars and monks in Colombo for joining in the celebration organized by the High Commission of India in Colombo to mark the recognition of Pali as a classical language by the government of India. The event that was organized was attended by several academics from Buddhist and Pali studies as well as from India, which reinforces the bonds that exist between the two countries.
पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के निर्णय पर कल कोलंबो में स्थित स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में एक पैनल चर्चा आयोजित की गई। ये कार्यक्रम गंगारामाया महाविहार के उपाधिकारी प्रकिरेंद्र आसाजी थेरो, श्रीलंका में भारत के उप उच्चायुक्त डॉक्टर सत्यांजल पांडे और बुद्ध शासना मामलों के सचिव रंजीत आर्यरत्ने की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्रीलंका के विभिन्न विश्वविद्यालयों से पाली और बौद्ध अध्ययन के कई प्रमुख शिक्षाविदों ने चर्चा में भाग लिया। वहीं दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय से प्रोफेसर आनंद सिंह का वीडियो संदेश भी साझा किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलंबो में विद्वानों और भिक्षुओं के प्रति आभार और प्रशंसा व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सत्यांजल पांडे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देकर भारत इस भाषा के प्रचार और समझ के साथ साथ भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। वहीं डॉक्टर आसाजी थेरो ने पाली भाषा को समय पर मान्यता देने के लिए सभी भिक्षुओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। परिक्रमा के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने आज दिल्ली के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में 5 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया है। इन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के जरिए ट्रॉमा सेंटर में हर महीने लगभग 2500 रोगियों की सेवा की जा सकेगी, जो इसकी वर्तमान सेवा क्षमता से लगभग दोगुनी है। मॉड्यूलर थिएटरों की विशेषताओं के बारे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर ओटी आधुनिक तकनीकों से लैस है और पूरी तरह एकीकृत है, जिससे उपचार की दक्षता और प्रभावशीलता बेहतर होगी तथा इलाज के बाद संक्रमण के रोकथाम में भी कारगर साबित होगी। प्रत्येक थिएटर में मल्टी स्पेशलिटी प्रकरण के साथ साथ ऑर्गन रिट्रीवल या अंग प्रत्यारोपण भी आसानी से किए जा सकते हैं। संक्रमण को कम करने के लिए ओटी में लैमिनर फ्लो एसी प्रणाली और निर्बाध फर्श लगाए गए हैं। इसके अलावा इनमें से सबसे बड़ा ओटी लेड से इंसुलेटेड है, जो इसे रेडियो सुरक्षित बनाता है, और इसके माध्यम से सीटी स्कैन से जुड़े ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। उपचार के अलावा मॉड्यूलर थिएटर से मेडिकल के छात्रों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण भी प्रदान होगा। ओटी में होने वाली सर्जरी को डेमो रूम, व्याख्यानशाला या दुनिया में कहीं भी सीधा प्रसारित किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार से बात करती हुई जेपीएनए ट्रॉमा सेंटर में ट्रॉमा और एनेस्थीसियोलॉजी की प्रशासनिक प्रभारी डॉक्टर बबीता गुप्ता ने बताया कि इन मॉड्यूलर थिएटरों के तकनीकों को विश्व स्तरीय पैमानों पर बनाया गया है।
मैम, आज एम्स में एक विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर की उद्घाटन हुई है, तो उसके कुछ फीचर्स आप हमें बता सकते हैं क्या?
हमारे पास ऑलरेडी 6 ऑपरेशन थिएटर्स हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, और ये 5 और ओटीज बनी हैं जो मॉड्यूलर ओटीज हैं। जो पिछले हमारे 6 थिएटर्स हैं वो मॉड्यूलर नहीं है, ये 6 अलग से हमने 5 मॉड्यूलर ओटीज बनाई है जो इंटीग्रेशन के साथ है, और इनमें अलग से इंडक्शन रूम्स है। हर ओटी के साथ एक अटैच्ड इंडक्शन रूम है जिसमें हम एनेस्थीसिया देंगे, और उससे टाइम की काफी बचत होगी और नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। और एक ओटी इसमें लेड लाइन है जिसमें सीटी गाइडेड ऑपरेशन हो सकते हैं।
मैम, तो आम जनता को हम कैसे बता सकते हैं कि एक साधारण ऑपरेशन थिएटर और एक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में क्या अंतर है?
मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में जिस तरह के पैनल्स और फ्लोरिंग वो होती है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जैसे सुझाव दिए गए हैं उस गाइडलाइंस के हिसाब से बनी हुई होती है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल बेटर होता है, फंक्शनैलिटी वाइज वो बेटर होती है एंड मेंटेनेंस फ्री होती है ऑलमोस्ट।
इसके अलावा एम्स हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर बनाने की प्रक्रिया में भी है जिसे अगले एक दो वर्ष के अंदर पेश किया जाएगा। परिक्रमा के लिए आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
और सारा कार्यक्रम में वक्त हुआ है खेल जगत की हलचल जानने का, तो खेल खबरों की पूरा पिटारा लेकर स्टूडियो में पहुंच चुके हैं अतर सईद। अतर, कहां से शुरू करेंगे?
मुकेश, कुश्ती से हम शुरुआत करते हैं। भारत के विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने आज अल्बानिया के तिराना में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। मोरे ने पुरुषों के 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में एडम उल्बाशेव को 14-10 से हराया। ये इस चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक है। ईरान के अली अब्दुल्ला अहमदी वफा ने स्वर्ण और राशिद मामादेव ने रजत पदक हासिल किया। जापान के कोहेल यामागीवा ने मोरे के साथ कांस्य पदक प्राप्त किया। इससे पहले भारत की अंजलि महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग के फाइनल पहुंची। उन्होंने कल सेमीफाइनल में इटली की अरोरा रूसो को 4-0 से हराया। आज रात फाइनल में अंजलि का मुकाबला यूक्रेन की सोलिमिया विनिक से होगा। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुणे में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 259 रन बनाकर न्यूजीलैंड आउट हो गई। न्यूजीलैंड की ओर से देवन कावे ने 76 और अचिन रविंद्रा ने 65 रन बनाए। भारत की ओर से वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट हासिल किए। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से पीछे चल रहा है। और बात करें महिला क्रिकेट की, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 43 ओवर में 8 विकेट पर 224 रन बना लिए हैं। मुकेश,
धन्यवाद अतर। और सायरा, अब वक्त हुआ है कि व्यापार जगत की हलचल भी जान ली जाए।
यस मुकेश, द डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस टुडे एंडेड मार्जिनली लोअर, एक्सटेंडिंग देयर लूजिंग स्ट्रीक टू 4th कंसेक्यूटिव सेशन। The BSE Sensex ended flat with a fall of 17 points to close at 80,065 and the NSE Nifty shed 36 points to settle at 24,399.
और अब वक्त हुआ है कि देश की जो आजादी की गाथा है उसको भी सुन लिया जाए, तो अब सुनते हैं आजादी का सफर।
आज जयदेव कपूर की जयंती है। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1908 को उत्तर प्रदेश के हरदोई में हुआ था। कानपुर के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे शिव वर्मा के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। 1925 में जयदेव को बनारस में क्रांतिकारी नेटवर्क विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, इसलिए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। वहां भगत सिंह उनके साथ कई दिन तक लिम्बड़ी हॉस्टल में रहे।
जयदेव कपूर ने आगरा में बम बनाने का प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में असेंबली में बम गिराने की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयदेव कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया और अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल भेज दिया गया, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। जयदेव ने अपने अंतिम समय में भगत सिंह और अन्य साथियों से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। भगत सिंह ने अपने नए जूते ये कहते हुए जयदेव को दिए थे कि पुलिस उन्हें छीन लेगी और कम से कम जयदेव कपूर तो उन्हें पहन सकेंगे। जयदेव कपूर ने उन जूतों को स्मृति के रूप में संभाल कर रखा। वे सेलुलर जेल में 16 वर्ष रहे और स्वतंत्रता से कुछ वर्ष पहले रिहा किए गए।
आज लक्ष्मी सहगल की भी जयंती है। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में हुआ था। लक्ष्मी के पिताजी का नाम एस स्वामीनाथन और माताजी का नाम एवी अम्मुकुट्टी था। अम्मुकुट्टी स्वामीनाथन सामाजिक कार्यकर्ता और स्वाधीनता सेनानी थी, जो बाद में भारत की संविधान सभा की सदस्य भी बनी।
हाई स्कूल करने के बाद लक्ष्मी ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की। जहां से उन्होंने 1938 में MBBS की डिग्री हासिल की। इस दौरान लक्ष्मी और उनका परिवार स्वाधीनता संघर्ष में भी शामिल रहा।
26 वर्ष की युवा डॉक्टर लक्ष्मी 1940 में सिंगापुर चली गई। उन्हें पता चला कि सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज में महिलाओं को भर्ती करने के इच्छुक हैं। जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए तो लक्ष्मी ने उनसे मुलाकात का आग्रह किया। नेताजी से मुलाकात के बाद लक्ष्मी को महिला रेजिमेंट बनाने की जिम्मेदारी मिल गई।
नेताजी इतना अच्छी तरह समझाया और उन्होंने बता दिया कि आप लोग सिर्फ देश की आजादी के लिए नहीं है, महिला मुक्ति के लिए भी आप लोग लड़ेंगे। खराब लगता है कि हमारे देश में हम लोग सिर्फ अंग्रेजों से गुलाम नहीं है, हमारा सामाजिक भी ऐसे बुराए हैं जिसे हम लोग खुद गुलाम को बनाते हैं।
इस रेजिमेंट को रानी झांसी रेजिमेंट नाम दिया गया। इस तरह डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन कैप्टन लक्ष्मी बन गई। दिसंबर 1944 में आजाद हिंद फौज ने बर्मा के लिए कूच किया। मार्च 1944 में जापानी सेना ने ब्रिटिश भारत के पूर्वी क्षेत्र पर हमला शुरू किया।
और श्रोताओं, वक्त हुआ है उन महान हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा जगत में हिंदी और बांग्ला फिल्मों के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मन्ना डे को। मन्ना डे का पूरा नाम प्रबोध चंद्र डे था और 1950 से 1970 के दशक में उनकी प्रसिद्धि चरम पर थी। उनके गाये गीतों की संख्या 3,500 से भी अधिक है। उन्हें 2007 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। भारत सरकार ने उन्हें 2005 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। मन्ना डे ने अपने जीवन के 50 वर्ष मुंबई में बिताए।
Yes, he had a classical music background, being part of the Bhendi Bazaar Gharana, and he received training under Ustad Aman Ali Khan. Manna Day is widely recognized as one of the most versatile and celebrated vocalists in the Hindi film industry, and is often acknowledged for his significant contributions to integrating Indian classical music into Hindi commercial cinema. As a musician, he is particularly acclaimed for incorporating Indian classical music elements into a pop musical framework, which is a contribution that played a pivotal role during the golden era of Hindi cinema.
प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल,
कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल।
प्यार हुआ
मन्ना डे पहले केसी डे के साथ और फिर बाद में सचिन देव बर्मन के सहायक बने। बाद में उन्होंने और भी कई संगीत निर्देशकों के साथ काम किया और फिर अकेले ही संगीत निर्देशन करने लगे। कई फिल्मों में संगीत निर्देशन का काम अकेले करते हुए भी मन्ना डे ने उस्ताद अमान अली और उस्ताद अब्दुल रहमान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी लेना जारी रखा था। तो ये गाना सुने।
ये रात भीगी भीगी ये मस्त बिजाए उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा
क्यों आग सी लगा के सुन है चांदनी तूने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा
इठलाती हवा नीलम का गगन कलियों पे ये बे
While majority of his songs were in Bengali and Hindi, Manna Day showcased his singing prowess in 14 other Indian languages, including Bhojpuri, Punjabi, Assamese, Gujarati, Kannada, Malayalam, and Chhattisgarhi also. His musical zenith was observed during the mid-1950s to the 1970s. And agar unke gaano ke zakhire ki baat kari jaye, to he has recorded a total of 3,047 songs.
जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए तो भी देखो मन नहीं जागे पीछे पीछे सपनों।
और आज ही पुण्यतिथि है भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी की। उन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। वे बनारस घराने से संबंधित हैं और गायकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1972 में पद्मश्री और वर्ष 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गिरजा देवी संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी सम्मानित की जा चुकी है। बिल्कुल, तो श्रोताओं समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुस्तफा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।
नमस्कार।